श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 30 श्लोक संख्या 30। एवं कुटुंबं बिभ्राणा उदरं भर एव वा विसृजेहो भयं प्रत्या भुंक्ते तत्फलमिदृशम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। इस शरीर को त्यागने के पश्चात वह व्यक्ति जिसके बारे में अब तक वर्णन होते आ रहा है, वह व्यक्ति जो पाप कर्मों द्वारा अपना तथा अपने परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करता है, नारकीय जीवन बिताता है और उसके साथ उसके परिवार वाले भी। तात्पर्य, आधुनिक सभ्यता की यही भूल है कि इसमें मनुष्य अगले जीवन में विश्वास ही नहीं करता, किंतु वह विश्वास करे अथवा ना भी करे तो भी अगला जीवन होता है। और यदि कोई वेद तथा पुराण जैसे शास्त्रों से समस्त उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन नहीं बिताता तो उसे कष्ट भोगना पड़ता है। मनुष्य से निम्न योनियां अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक निश्चय विधि से कर्म करना होता है, किंतु मानवीय चेतना वाले विकसित जीवन में यदि कोई अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं बनता तो निश्चय ही उसे यहां पर वर्णित विधि के अनुसार नारकीय जीवन बिताना होगा। हरे कृष्ण। मोबाइल को साइलेंस में रख सकते हैं, डिस्टर्ब कर। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम आप सभी ब्रजवासी भक्तों के चरण कमलों में प्रणाम। प्रभु व माताओं, जहां तक मुझे याद है ये मेरा पहली बार यहां मैं बैठा हूं जब से बलराम हॉल बना, उसके बाद से मैं यहां अनुपस्थित था। तो समस्त वैष्णव भक्तबंधुओं के चरण कमलों में प्रणाम। तो यह जो श्रृंखला है बहुत ही उपादेय है, शीर्षक प्रभुपाद जी ने दिया है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। तो यहां जो पहला शब्द है एवं, तो इसका अर्थ है इस प्रकार। तो जहां इस प्रकार से शब्द आता है एवं, तो हमें यह समझना चाहिए कि इसका संबंध पहले श्लोकों से है। अर्थात अब तक जितने भी श्लोक वर्णन होके आ रहे हैं या हुआ है, उसके बाद ये एक तरह से एक सारांश की मोड़ की ओर जा रहा है और बस 5-6 श्लोक है इस अध्याय को पूरा होने में। तो इसलिए यहां बताते हैं इस प्रकार, अर्थात इससे पूर्व जो भी वर्णन हुआ है, एक भौतिकवादी व्यक्ति जिसको हम कहते हैं साधारण भाषा में एक कर्मी, जो कि जिसका पूर्ण संपूर्ण जीवन इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन का क्या हाल होता है, तो बताते हैं कि जो इस प्रकार से अर्थात पहले से जो भी वर्णन है करता है और क्या करता है इस श्लोक में, कुटुंब भरण विभ्राण, कुटुंब को पालन करने में लगा रहता है। पहली बात तो है कि अपना पेट पालता है, बस कैसे उदर भरे और थोड़ा सा ज्यादा जाके अपने परिवार के जो लोग हैं केवल उन लोगों को पालन पोषण करने में पूरा जीवन जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति विसृज्य ये शरीर त्याग करने के बाद, मृत्यु के बाद, प्रत्यय अर्थात मृत्यु के बाद बहुत दुख यातना भोगता है, भुंगते बहुत दुख भोगता है, अकेला नहीं भोगता है। एक शब्द है इसमें उभयम, दोनों, अर्थात वो खुद और जिसके लिए वो ये सब कर रहा है अर्थात परिवार के सदस्य, वो खुद तो भोगेगा और परिवार के सदस्य, क्योंकि वो लोग भी अज्ञानी हैं, ये सारे भोगते हैं नरक की यातना। तो प्रभुपाद जी तापतर में बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि ये कोई भी नहीं जानता या समझने की प्रयास नहीं करता है, भूल गए हैं, अर्थात पहले जानते होंगे लेकिन अभी भूल गए हैं, या वो भूल करते हैं, गलती करते हैं। क्या कि किसी को भी पूछिए तो यही जवाब देगा वो, किसने देखा है अगला जन्म, किसने देखा है ये जो जन्म हम अभी जी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, यही बस एक है, अगला जन्म किसने देखा है। तो प्रभुपाद जी तापतरे के पहले भाग में इस पर वर्णन करते हैं। ज्यादातर भौतिकवादी लोग यही सोचते हैं कि यही बस जीवन है जो हम जी रहे हैं, ना पहले कुछ था ना आगे कुछ होगा, ये सब बकवास है, ये सब ऐसे ही बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब रशिया में पहली बार गए थे प्रचार करने के लिए, तो वहां एक प्रोफेसर थे बहुत प्रसिद्ध कटोस्की, तो उनसे जब वार्तालाप हुआ तो वो भी इस प्रकार से बोले, तो प्रभुपाद जी आश्चर्य करने लगे, कितना बड़े यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। और इस बात को अक्सर वो जहां भी जाते थे दूसरे प्रांतों में विश्व के, यही बताते थे कि एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, विद्वान है भौतिक शिक्षा में, लेकिन उसको इतना पता नहीं कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। और ये उस समय की बात है रशिया में, लेकिन आज तो भारत में हर जगह पे हर एक व्यक्ति यही मान बैठता है। कभी कभी उस समय 1970s में प्रभुपाद जी कहते थे, अगर हम आप में से कोई भारतवर्ष आएगा और हमारे भारतवर्ष में एक रिक्शा वाला को भी पूछेगा कि जानते हो मरने के बाद क्या होगा, तो वो भी बोल सकता है कि हाँ अगला जन्म है, हमें दुख भोगना पड़ेगा, कष्ट भोगना पड़ेगा, नरक यातना होगा। एक रिक्शा वाला तक इतना तक जानता है भारतवर्ष में, और विदेशों में तो कहना ही क्या है, कोई बिलीव नहीं करता है, कोई विश्वास नहीं करता है। और जिस प्रकार से मीडिया का प्रचार हो रहा है, जैसे सिनेमा, सीरियल्स, मैगजीन्स, इसमें जो भी नाटक परिवेशन किया जाता है उसमें बस यही दिखाया जाता है कि जो हम देख रहे हैं, जो अस्तित्व है हमारा अभी, यही बस है। और तरह तरह के गाने गाते हैं कि किसने देखा, क्या है ये सब, तो कोई बिलीव नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए शास्त्रों से, हम चाहे विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये सत्य बात है, गलती हो गया, मैं नहीं जानता था, ये नहीं कह सकते, क्योंकि बचपन से हमको इस प्रकार संस्कार से हम पले बड़े हैं कि हमको ये सब पता होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, बंबई के लोकल ट्रेन में जो अलग अलग बॉगीज रहते हैं कंपार्टमेंट, उसमें कुछ कंपार्टमेंट में इस प्रकार से निशान रहता है, जो कोई पहली बार अगर मुंबई गया हो तो वो जान नहीं पाएगा, और गलती हमसे भी हो गई थी और हम चढ़ गए। हमने देखा कि यहां के जो लोकल ट्रेन में जिस प्रकार से लोग चढ़ते उतरते हैं, जिस प्रकार से भीड़ है, हम भागवतों में सुने थे 28 नरक है और ये 29वां होगा लगता है, बहुत भीड़ है, जिन लोगों का अनुभव है सब जान सकते हैं। लेकिन कुछ कंपार्टमेंट में देखा कि हाँ तो भीड़ कम है तो चढ़ गए, वो तो सीट मिलता है, लोग कम क्यों है, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास है, उसका चार्ज अलग है, तो कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसको पता नहीं होगा, तो जैसे चढ़ जाते हैं तो चढ़ गए। तो जब उस समय टीटी आता है, क्योंकि लोकल ट्रेन में टीटी जनरली चेक नहीं करता है, गाय बकरी के समान भर भर के जाते हैं और कहीं उतर जाते हैं, कौन टीटी चेक करेगा, टीटी आएगा तो उसको दबा देंगे, इतना भीड़ होता है। लेकिन वहां टीटी आया, जब पूछा कि टिकट कहां है, तो हमने टिकट दिखाया, तो बोले कि रसीद बुक निकाले। फिर मैंने कहा क्या हुआ, हमने टिकट निकाले हैं, टिकट दिखिए, आप गलत बोगी में चढ़ गए, ये फर्स्ट क्लास है, इसका चार्ज अलग रहता है। तो फिर हमने उनको बताया, देखिए हम पहली बार वृंदावन से आए हैं, गांव से हैं, हमें पता नहीं बंबई का जो नियम है, जो हाल चाल। तो थोड़ा बहुत समझाने के बाद वो समझ गए, और हमारे पास रामबाण अस्त्र था, वो है महाप्रसाद, तो उनको दे दिए, तो संतुष्ट हो गए। लेकिन एक बात हमें समझ में आया कि दूसरे किसी को भी देखते हैं ना, उनको वो रसीद फाड़ लेते हैं, ले लेते हैं, क्योंकि उनका नियम है। वो बताते हैं अगर बोले भी कि हमें पता नहीं था, हमने सोचा कि सीट खाली है तो बैठ गए हम, बोले ऐसा नहीं, अगर आपको पता नहीं था तो पता होना चाहिए, पता कर लेना चाहिए, अगर नहीं है तो इस बार दे दीजिए, अगली बार से कभी भूल नहीं होगा, पता हो जाएगा जीवन भर के लिए कि कैसे हम कहां कैसे बैठना है। तो उसी तरह से एक छोटा सा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि लोग जो कहते हैं कि हमें पता नहीं है, सब कुछ पता रहता है, विशेष करके जो भारतवर्ष में जन्म लिया है सबको पता है कि हमारा संस्कृति ऐसा है कि ये जीवन के बाद अगला जीवन है, और इस जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कभी कभी चार्वाक मुनि का उदाहरण देते हैं, भारत के बहुत बड़े दार्शनिक चार्वाक मुनि, वो कहते हैं कि जावत जीव सुखं जीव, जब तक हम जिएंगे तो सुख में जिएंगे, क्यों दुखी होंगे, क्यों दुखी में जीवन बिताएंगे, सुख में जिएंगे। अच्छा, सुख में जीने के लिए ऋणं कृतं घृतं पिबो, सुख में कैसे जिएंगे, जब घी का पकवान खाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान जो है छपन भोग जैसा कोई पकवान, घी का पकवान खाएंगे तो सुखी होंगे हम। लेकिन घी के लिए तो पैसा लगता है, आजकल तो 1000 रुपया किलो हो गया है पथमेड़ा का घी, या जो भी अलग अलग वैरायटी के, तो पैसा इतना लगता है। तो फिर कहते हैं कि ऋण कर लो, किससे उधार ले लो, लोन ले लो, फिर उसमें घी खरीदो, पकवान बना के खाओ। तो फिर प्रश्न उठता है, तो ऋण तो उतारना पड़ेगा, नहीं तो इंटरेस्ट बढ़ेगा। अरे किसने देखा है, भस्मीभूत शरीर कुतो पुनरागमन भवे, शरीर एक बार घी खाने के बाद, हृष्ट पुष्ट होने के बाद, स्वास्थ्य सुस्त होने के बाद, जब एक बार वार्धक्य होकर मर जाता है या शरीर नष्ट हो जाता है, फिर तो कौन, किसने दिया किसने लिया, सब खत्म, ऐसा कहते हैं। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से चार्वाक मुनि का उदाहरण देते हैं। तो महाराज श्री एक बार इस श्लोक के ऊपर बोल रहे थे कि चार्वाक मुनि ऐसे बोलते हैं, तो वो प्रभुपाद का कोट करते थे कि प्रभुपाद जी को किसने विदेश में पूछा कि आप कहते हैं कि भारत के दार्शनिक और ऐसे बोलता है, हाँ अगर रशिया अमेरिका का होता तो कोई अलग बात होती, भारत का दार्शनिक और ऐसे कहता है कि ऋण करके घी पियो। तो महाराज जी बोले कि प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि भारत का दार्शनिक है इसलिए घी पीने के लिए बोले, शराब पीने के लिए तो नहीं बोला ना, और कोई होता तो इस प्रकार से नशा पान करने को बोला होता। तो हमें यह समझना चाहिए कि जीवन ऐसे चलता रहता है। प्रभुपाद जी तापत्र के दूसरे आधे हिस्से में वो कहते हैं कि ये जो नरक है ना, हेलिस प्लैनेट, ये पता है किनके लिए, कुत्तों, बिल्ली, सुअर, गधा, गाय, बैल, बाघ, भालू, इन सब के लिए। कौन कहता है, हाथ उठाओ। कुत्तों के लिए नहीं, बंदर इतना नटखट करते हैं, कितना पाप कर्म करते हैं, क्या क्या सब करते हैं, उनके लिए नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य से निम्न योनियां अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, ये उनका नेचुरल टेंडेंसी है, स्वाभाविक स्थिति है इस प्रकार से कार्य करना। लेकिन ये जो हेलिस प्लैनेट है, जो वर्णन है, वो केवल मनुष्यों के लिए है। कोई एक भी कुत्ता या बिल्ली यमदूत जिसको पकड़ के लेके नहीं जाते हैं, केवल मनुष्यों के लिए। इसका कारण यह है कि मनुष्य जो चेतना है, उसका ज्ञान है, अलग प्राणियों से बहुत ऊंचा है, अच्छे बुरे की परख है, और वो जानता है, और वो अच्छा क्या है वो कर सकता है, उत्तरदायी है, जिसको प्रभुपाद जी यहां प्रपोर्ट में कहते हैं रेस्पॉन्सिबल। तो हम लोगों को रेस्पॉन्सिबल बनना है, उत्तरदायी बनना है, कि हम इस जीवन में उनके जैसा कार्य नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो फिर यातना भोगनी पड़ेगी। विदुर जी इस जो इस प्रकार से भौतिक जीवन जीता है उसके लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है। आप सब सुने होंगे पहले स्कंद भागवतम में विदुर मैत्रेय संवाद जो है तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद में आता है। चौथे स्कंद के बाद मैत्रेय जी जब सब वर्णन करते हैं विदुर को कि ऐसी स्थिति है भौतिक जगत का, विदुर जी कहते हैं कि गुरु महाराज थोड़ा सा रुकिए, आपने जितना वर्णन किया मैंने पूरा समझ गया, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा कुछ काम है, बहुत अर्जेंट काम है, जाना है। और कहां जाना है वो पहले स्कंद में वर्णन है। इस सब समझने के बाद कि मेरा एक जड़मती भाई धृतराष्ट्र वो अब तक घर में पड़ा है, उसको मुझे उद्धार करना है। चौथे स्कंद के बाद जो विदुर जी चले जाते हैं वो वर्णन है पहले स्कंद में। इसलिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, भागवत क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, एक के बाद ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे जरूरी नहीं। सुखदेव गोस्वामी को जैसे मन में आ रहा था वैसे बोलते जा रहे थे, ये हमें आचार्यों से समझ में मिलता है। तो जाके समझाते हैं भागवतम में इतना वर्णन नहीं है जे क्या बोले, थोड़ा बहुत है कटु वाक्य तो बोले, लेकिन इससे बहुत गुण कई गुना ज्यादा स्ट्रांगली कटु वाक्य विदुर जी एग्जैक्टली क्या बोले धृतराष्ट्र को वो वर्णन है महाभारत में। आखिर क्या बोले जो धृतराष्ट्र में इतना वैराग्य आ गया और बूढ़ा अंधा इतना उम्र होने तक घर में ही पड़ा रहा, उसको वो घर छोड़ के चला गया। महाभारत में ऐसे वर्णन है कि ये तब की बात है जब सब युद्ध हो गया था, सब युधिष्ठिर महाराज राजा थे और बहुत सुंदर पाल पोसते थे, अपने ताऊ कहते हैं ना हिंदी में ताऊ, धृतराष्ट्र और गांधारी जी को बहुत पालन करते थे, बहुत सुंदर। लेकिन भीमसेन का इनके प्रति और उनका भीमसेन के प्रति भाव अलग था। भीमसेन कभी जब भी जाते थे धृतराष्ट्र के सामने, गांधारी माता के सामने परोसने के लिए भोजन वगैरह, उनको देख के उनको पूरा जो दुर्योधन की याद आते थे भीमसेन को, इसलिए वो कभी कभी सह नहीं पाते थे। हालांकि वो वध हो गया लेकिन वो क्या करते थे, ऐसे बाहों स्पोर्ट करते थे और आवाज जब धृतराष्ट्र महाराज सुनते थे वो तिल मिला जाते थे कि इसने मेरे सारे 100 लड़कों को गिन गिन के मारा। मैंने एक उदाहरण दिया महाभारत में, विस्तृत वर्णन है, समय नहीं है कहने के लिए, लेकिन आप समझ जाइए कि भीमसेन और धृतराष्ट्र का संबंध कुछ इस प्रकार से था। हालांकि सेवा करते थे लेकिन क्षत्रिय स्वभाव होने के जो इनके साथ अत्याचार हुआ वो भीमसेन भूल नहीं पाते थे, इसलिए कभी कभी उनके लक्षण से ऐसे पता चलता था कि वो बहुत अभी भी बहुत क्रोध में है। तो जो भी हो, लेकिन धृतराष्ट्र महाराज और गांधारी को ये भीमसेन का जो आचार व्यवहार थोड़ा सहन नहीं होता था। वो मन में सोचते थे क्या अभी क्या करें अभी तो हम, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का प्रेम के वजह से वो कुछ सब भूल जाते थे। तो विदुर जी जब आए धृतराष्ट्र को बताने के लिए कि क्या कर रहे, बहुत कटु वाक्य बोलते हैं, तुम कुत्ते के समान यहां पड़े हो, अभी अंधा बूढ़े हो गए हो, अपने भाई को, क्योंकि वो जरूरी है कभी कभी कुछ किसी व्यक्ति को प्रचार करने के लिए थोड़ा थर्ड डिग्री इस्तेमाल करना पड़ता है, नहीं तो वो सुनते नहीं, वो निकलते नहीं वहां से। तो कटु वाक्य बोलते हैं और वो कहते हैं भीम का दिया हुआ झूठा तुम खाते हो। तो उस श्रृंखला में वो एक एलिगोरिकल स्टोरी बोलते हैं, एक पहेली जिसको हिंदी में कहते हैं पहेली, एक पहेली बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति, ध्यान रखिए विदुर धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, एक व्यक्ति जंगल में गया, जा रहा था, एक जंगल घना जंगल देखा उसने। तो घना जंगल में जब गया तो अंदर जब घुसा तो बेचारा भूखा प्यासा था, देखा बढ़िया जंगल है, फल फूल के पेड़ लगे हैं, झरना है, नदी है, बड़ा सुंदर वातावरण है। तो उसको तो भूख प्यास लग रहा था इसलिए वो फल खाने के लिए गया और पानी पीने के लिए गया। तब तक उसको एक बहुत खूनखार जानवर की आवाज सुनाई दी, एक शेर की। शेर जब पीछे मुड़ के देखा तो शेर था, एक बहुत बड़ा जंगली जानवर शेर और दहाड़ रहा था, गर्जन कर रहा था और उसके पीछे भागा। ये बेचारा जान बचाने के लिए लगा सामने भागा, बहुत जोर तेजी से भागा और शेर इसके पीछे। और जाते 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 ऐसा एक समय, एक ऐसा एक जगह आया, एक पेड़ के, एक पेड़ था, वृक्ष था, उसके पीछे वो छिप गया और धीरे से पीछे देखने लगा और हांफ रहा था। इतना जोर से वो भागा कि सांस भी नहीं ले पा रहा था और ऐसे हांफ रहा था। पीछे मुड़ के देखा तो शेर दिखाई नहीं दिया। सोचा जान बच गई, चलो अभी कुछ भोजन करते हैं, कुछ पानी पीते हैं। बहुत देर से भाग रहा था, बाएं तरफ मुड़ के देखा तो एक चीखने की आवाज आई, एक चुड़ैल, एक डायन, डायन समझते हैं ना, वैसा एक आए जैसे मान लो कि उसको भी अभी खा लेगी। वो पीछे पड़ गए तो ये फिर से भागा। अरे एक से तो जान छुटा, दूसरा कहां से आ गया। वो जंगल में जिधर उसको रास्ता मिलता था भागते गया, भागते गया, भागते गया, भागते भागते गया, पूरा बहुत तेजी से भागा। और इस बार जब भाग रहा था, भाग रहा था, एक बहुत बड़ा बट्ट वृक्ष था और बट्ट वृक्ष के जो लटकते हैं, एक लता आई थी, उस लता में उसका पैर फंस गया। फंस गया तो गया, गिर गया एकदम। उसको पता नहीं था एक बड़ा अंधा कुआं था, एक बड़ा कुआं था और वो कुएं के अंदर बहुत जोर से तेजी से नीचे गिरने लगा। अब लगा कि वो सर फटेगा और मरेगा, लेकिन जैसे ही गिर रहा था तब तक क्या हुआ कि उसके पैर में वो लता फंस गया था, इसके वजह से वो लटक गया और झूल रहा था ऐसे। तो उसको राहत मिली, बच गया भगवान, अभी तो मेरी जान जाने वाली थी। लेकिन उस समय उस क्या देख रहा है कि जब उसका सिर नीचे था, नीचे देख रहा है कि अंधा कुआं है, पानी नहीं है, लेकिन कांटे और मकड़ी के जाल और सब भरे हुए हैं और उसमें से दो चमचमाती हुई कोई लाइट दिख रही है। थोड़ा आंख साफ करके देखा वो क्या है, वो देखा कि एक बहुत बड़ा काला नाग, कोबरा, वो नाग उस कुएं के अंदर है और वो उस तरफ, उस व्यक्ति के तरफ फन उठा के देख रहा है, ये कब गिरेगा और मेरा, मैं उसको डसूं। इस प्रकार से देख के भयभीत हो गया, अरे मैं अभी मैं क्या, कौन सी स्थिति में हूं, काला नाग सामने है। ऊपर देखा तो एक तरफ शेर है और एक तरफ चुड़ैल है, वो किस प्रकार से भयानक शब्द प्रकट करते हैं और किस एक्शन से प्रकट करते हैं, वो अभी मैं यहां बता नहीं सकता, आप समझ जाइए। तो इस तरह से वो जब झूल रहा था तब तक, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर एक मधुमक्खी का छाता वो बना था, छाता समझते हैं ना, मधुमक्खी का छाता जिसमें मधु भरे हुए थे, वो हिलने के वजह से क्या हुआ, वो मधु एक एक बूंद टपक रहा था और दैव के मन सौभाग्य से वो मधु उसके मुंह के ऊपर ही टपक रहा था, टप, और जीवा के ऊपर टपक रहा था। तो जब मुंह के ऊपर टपक रहा था, वो जीवा को बाहर निकाल के ऐसे चाट रहा था, आहा कितना बढ़िया मधु है, इसके सामने तो डाबर हनी भी फेल हो जाएगा, जंगल का ओरिजिनल मधु का स्वाद कितना होगा, आप समझ सकते हैं। तो बहुत उसको बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन तब तक उसने उसको सुनाई दिया कुछ आवाज, जैसे मान लो किसी काटने की आवाज। आवाज जब सुनाई दी, वो अच्छी तरह से गौर से देखा, जिस लता में वो लटक रहा था उस लता को दो चूहे काट रहे हैं, दो चूहे, एक नहीं दो, एक नहीं दो चूहे। अब देखो उसकी हालत क्या होगी, अब तो मरने वाला, अब तो वो गिरने वाला, अब काट काट रहे हैं, वो किसी भी समय वो गिर सकता है। एक काला चूहा था, एक सफेद चूहा था, दोनों मिलकर काट रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब वो झूलता है ऐसे लटकता है तो वो मधुमक्खी हिलने की वजह से, वो मधुमक्खी जो फेन है, सॉरी मधुमक्खी के अंदर जो मधु, जो मधुमक्खी है, जो छाता के अंदर जो मधुमक्खियां हैं, वो मधुमक्खियां सब छाता से निकल के भड़बड़ 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 ऐसे सब सब उड़ रहे हैं और देख रहे हैं कि कहां से ये हिलने की जो स्रोत है। देखा अच्छा, हमारे घर को आबाद कर दिए, हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सारे आके इसको मार रहे हैं टांग टांग करके। मधुमक्खी का काटना वो कितना अच्छा लगता होगा ना, अनुभव है। तो जोर से काट रहे हैं और वो बेचारा परेशान हो गए, लेकिन भूल जाता है जब मधु टपकता है। मधु जब टपकता है तो उस चाट लेता है और भूल जाता है। तो इस प्रकार से उसकी स्थिति है। बताइए कैसी दयनीय स्थिति है। धृतराष्ट्र महाराज बोले क्या बोलना चाहते हो तुम। विदुर बोले कि आपको पता है ये कौन है, कौन है, ये तो एक व्यक्ति है भैया, आप ही हो। तो वो घबरा गए, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारे भ्राताश्री के साथ, तुम भाई के साथ ऐसे बोल रहे हो। बोले केवल आप नहीं, आपके जैसे जितने भी सब कर्मी हैं जो संसार में फंसे हुए हैं, संसार को ही अपना बना के रखे, वैसे ही है। फिर विदुर जी उनको समझाने लगे, जब व्यक्ति इस संसार में आता है, ये संसार एक भौतिक संसार एक घना जंगल के समान है, उस जंगल में तरह तरह के इंद्र तृप्ति के फल लगते हैं और उसमें व्यक्ति फंस जाता है कि कैसे हम इसको इकट्ठा करें, ग्रहण करें। लेकिन त्रिताप छोड़ता नहीं, वो त्रिताप है वो शेर, आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक जो ताप है वो कहां छोड़ेगा, पीछा छूटता ही नहीं, वो पीछे पड़ा रहता है हमेशा, कितना भी भागो त्रिताप छूटता नहीं। मान लो किसी तरह से वो त्रिताप से छूट गया, ओहो, उसके बाद बुढ़ापा जिसको कोई पसंद नहीं करता है, वो एक चुड़ैल के समान है। बुढ़ापा जो ओल्ड एज जिसको कहते हैं, जरा वो चुड़ैल के समान है, वो हर एक व्यक्ति को ग्रास करता है, फिर वो पीछे पड़ता है। उससे जान छूटने के लिए कोई आगे जाता है तो घर गृहस्थी में इस तरह से फंस जाता है, वो अंधे कुएं के समान वो गिर जाता है और बस थोड़े समय के बाद वो काल मृत्यु रूपक सर्प जो है वो डसने वाले हैं। और जो लता में उसका पैर फंस के वो लटकता रहता है, कुछ नहीं बल्कि उसकी अवधि है, आयु। हर एक व्यक्ति की जितनी आयु है उतने मीटर का वो लता है, 40 साल 60 80 साल उतनी लंबाई है, वो उसमें वो लटकता रहता है। प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात एक काला चूहा अर्थात रात और सफेद चूहा अर्थात दिन, ये दोनों चूहे उस आयु को काट रहे हैं। एक एक दिन एक एक रात जो है वो काट रहे हैं, वो चूहे दिन रात के समान है। इस प्रकार से बड़ा ही कठिन परिस्थिति में हर एक व्यक्ति है। और तो और कहने के लिए थोड़ा संकोच लगता है, लेकिन ये सत्य बात है, क्योंकि विदुर जी कहे तो मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं, बस अपना कोई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि जो घर परिवार के संबंधी है, जो कुटुंब है, वही वो मधुमक्खी के समान है जो व्यक्ति को नोच लेते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, वो करना है, बेचारा जीवन भर मेहनत करता है, परिश्रम करता है परिवार पोषण के लिए, वही लोग ही उसको बहुत परेशान करते हैं, वही लोग और कोई दूसरे नहीं। जिस छाता का आश्रय वो लेता है, उस जो मधुमक्खी का छाता, उस मधुमक्खी जो होते हैं वही उसको डांटते हैं, मारते हैं, बेचारा बहुत परेशान होता है। इसलिए भैया समय हो गया है, अब आपको वन में चलना चाहिए। इस प्रकार से सुनने के बाद धृतराष्ट्र महाराज वो चले जाते हैं हिमालय की ओर। फिर आप जानते हैं भागवतों में वर्णन है, वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं और गांधारी भी उनके साथ सती हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की दशा इस प्रकार है संसार में। इसलिए मनुष्य जीवन जो यहां बताया गया कि बहुत दुर्लभ है, इसके संदर्भ में एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतों में आता है कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि हधीर तूर्ण जतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। 11वां स्कंध में इस श्लोक में कहते हैं कि बहुत 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 जन्मों के बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मान लो जिसको लॉटरी लग गया हो, एक घर में हम सब अनुभव कर सकते हैं, एक घर में चींटियां कितने रहते हैं और आदमी कितने रहते हैं, ये जो मच्छर होते हैं कितने असंख्य है, एक रात में उन्हें डजन चिल्ड्रन पैदा करते हैं, वो उससे भी ज्यादा, और मनुष्य कितने हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि हम कितने कम हैं, कितने थोड़े से हैं। तो इसलिए श्लोक में कहते हैं कि बहुत जन्मों के बाद पुण्य कर्म करने के बाद ये शरीर को प्राप्त करते हैं हम, मनुष्य शरीर को इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्यम अर्थदम, ये प्राप्त करने के बाद बहुत लाभदायी है, फायदामंद है अर्थदम, लेकिन प्रॉब्लम है कि अनित्य है, चिरस्थाई नहीं है, बहुत ही क्षणिक है, 20-40-50 ज्यादा से ज्यादा 60-70 बहुत हो गया, खींच खींच के बहुत ही थोड़ा सा है। इसलिए क्या करना चाहिए, जब ये जान गए तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, धीर व्यक्ति को तूर्णम यते तो ना पते अनुमृत्यु जावत, जब जान लिए कि कभी भी किसी भी समय मृत्यु आ सकता है, अनुमृत्यु यावत, इससे उससे पहले शरीर छोड़ने से पहले हमको प्रयास करना चाहिए, तुरंत जब जान गए जब सुन लिए तो तुरंत प्रयास करना चाहिए, किसके लिए, निःश्रेयसाय अर्थात उस परम गति को प्राप्त करने के लिए, भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए अभी से लग जाना चाहिए। नहीं तो वो कहते हैं विषय खलु सर्वतः स्यात्, बाकी जो आहार निद्रा भय मैथुन कौन सी बड़ी बात है, क्या बंदर नहीं करते हैं, क्या कुत्ते नहीं करते हैं, चींटी नहीं करते हैं, घर में बैठा हुआ चिपकली भी करता है, वो सब करते हैं, अगर उसी में ही हम लगे रहें तो फिर कौन सी बड़ी बात है, कौन सा तीर मार लिए अगर वही करते रहे तो। इसलिए वो कहते हैं कि जब हम समझ में आ गया तब से लग जाना चाहिए कि कैसे हम भगवान के जो धाम को प्राप्त करें, और विशेष करके हम ये जानते हैं कि जैसे यहां हम लोग उपस्थित हैं, जब हम जान गए कि भगवान के धाम को प्राप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, तो जो लोग जैसे इस भगवान के धाम में रहते हैं वो तो कितने सौभाग्यवान है, सौभाग्यवती है, साक्षात जैसे हम महाराज जी से सुने हैं कि जो वृंदावन धाम में रहता है वो भगवान की गोदी में बैठा है, ये सत्य बात है। इस धाम की महिमा के बारे तो बहुत श्लोकों में वर्णन है, प्रबोधानंद सरस्वती जी एक किताब ही लिख दी है वृंदावन महिमा मृत। तो हम लोगों का कितने भक्तों का कितना सौभाग्य है जो यहां बास करते हैं, कि एक श्लोक में कहते हैं वृंदावनम इदम मन्ये भालम एव धरास्त्रिय सौभाग्य राज श्री कृष्ण तिलक यात्रा राजते। इस धारा को, इस पृथ्वी को एक स्त्री के साथ अगर तुलना की जाए, स्त्री के साथ एक सौभाग्यवती स्त्री इस पृथ्वी को, तो उसका जो माथा है, जो कपाल है, वो वृंदावन धाम है। आई बात समझ में, ये जो कपाल है, माथा है जो है, वो वृंदावन धाम है, और उस कपाल में, उस माथे में जो सौभाग्य की रेखा, जो कुमकुम जो सौभाग्यवती स्त्री लगाते हैं, वो है श्री कृष्ण। कितना सुंदर तुलना, देखिए धरा एक स्त्री है, वृंदावन धाम एक कपाल है उस स्त्री के, और उस स्त्री के सौभाग्य की जो रेखा है वो कुमकुम है, वो है वृंदावन धाम, और श्री कृष्ण है वो धाम है वो कपाल। तो इस प्रकार से इस धाम में रहने वाले जो हैं वो तो वैसे ही सौभाग्यवान है, सौभाग्यवती है, और उस ऊपर से थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हमारे लिए ये जो परम गति को प्राप्त करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, वैसे ही जैसे दूसरे दिल्ली बंबई पूना में जैसे लोग रहते हैं या अलग अलग जगह में रहते हैं, उस प्रकार से ही जीवन यहां जिएंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। पिछले साल कार्तिक में भक्ति विद्यापूर्ण महाराज वो जब आए थे तो वृंदावन धाम में कैसे रहना है वो पूरा लेक्चर दिए, कि इंग्लिश क्लास में बताए थे, वैसे मैं तो नहीं था लेकिन रिकॉर्डिंग सुना, बहुत इंस्पिरेशन मिला। कुछ एक दो पॉइंट आपको बताना चाहते हैं। वो बता रहे थे यहां जानवर भी रहते हैं, मंकीस बंदर कुत्ते सुअर गधे ये सब भी रहते हैं, और हम भी रहते, मैंने मनुष्य रहते हैं, और अंतर क्या है कि अगर हम यहां रह के कॉन्शियसली भावना को जागृत नहीं करते हैं, चेतना में, सही चेतना में नहीं रहते हैं, तो ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है। बस इतना ही क्या है कि अगर अपराध ना करेंगे, क्योंकि बंदर अपराध नहीं करते हैं, कुत्ते अपराध नहीं करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर अपराध ना करें और इस धाम में शरीर छोड़े, तो जैसे पशुओं का गति होता है, ये धाम का महिमा है, प्रभाव है, उस प्रकार से गति हर एक व्यक्ति के हो सकता है। लेकिन किसको अगर कृष्ण प्रेम भक्ति चाहिए, जो महाप्रभु देने के लिए आए हैं, उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, थोड़ा चेतन रहना पड़ेगा, थोड़ा भावना को जागृत करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना मृत संघ, उस भावना को जागृत करना पड़ता है। नहीं तो बस यहां रह के जैसे अन्य अमेरिका बंबई शहरों में जैसे लोग रहते हैं वैसे रहने से फायदा तो होगा, मना नहीं कर रहा हूं। शास्त्र कहता है कि धाम वास करने से फायदा होता है और शरीर सोने से तो होगा ही, लेकिन वो फायदा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। वो क्या? कृष्ण प्रेम। उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अलग अलग रस हैं, वैकुंठ रस, स्वर्गीय रस और पार्थिव रस। वैकुंठ रस होता है स्पिरिचुअल, संपूर्ण आध्यात्मिक, और स्वर्गीय रस होता है इमोशनल, और पार्थिव रस होता है सेंसुअल। तो हमें अपने आप में देखना है कि हम कौन से स्तर में हैं, अगर यहां रहते भी है, क्योंकि भगवान के धाम में सब वैकुंठ रस में रहते हैं। सारे भक्त आश्रय तत्व में है और भगवान विषय तत्व है, विषय तत्व है। वैकुंठ रस होता है जो आध्यात्मिक स्तर में रहते हैं हमेशा, जैसे आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन और गोकुल वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में भक्त लोग कैसे रहते हैं, उस भावना में रहना, उस चेतना में रहना। और स्वर्गीय रस थोड़ा सा नीचा, जो हमेशा इमोशनल, वो सुख दुख में कैसे भोग करें उसमें रहता है ना, हमें उसमें भी रहना है। और सेंसुअल रस जो होता है, जो पार्थिव रस है, वो तो थर्ड क्लास का है, एक नंबर का, माने वो नीचा स्तर है। जो बाहर दुनिया के लोग रहते हैं, बस खाना कमाना, भोग करना, सिनेमा देखना, ये करना वो करना, उसमें ही रहते हैं। तो अगर सेंसुअल इंद्रिय तृप्ति के रस में रह के वृंदावन में रहते हैं तो फिर गलत है, बहुत बड़ी गलती हो गई। वृंदावन धाम में रहना है तो हाईएस्ट रस में रहना है, क्या है? स्पिरिचुअल, वैकुंठ रस में रहना है। जैसे मान लो अगर हम रसगुल्ला खाते हैं, हम खाने वाला, हमारा जीवा हो गया आश्रय और रसगुल्ला हो गया विषय, ठीक है ना? तो जो रस को हम इंद्र सेंसुअल रस में आस्वादन करते हैं, वो जो रस को, उसी प्रकार से यशोदा माई कृष्ण को सेवा करके वो रस को आस्वादन करते हैं। लेकिन अंतर क्या है? ये सेंसुअल रस है, वो स्पिरिचुअल रस है। इसीलिए हमें ये अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एक तो मनुष्य शरीर दुर्लभ मिला है, और उसके बाद वृंदावन धाम में वास मिला है, और वृंदावन धाम में वास में रहकर अगर वही निचला स्तर में ही रहेंगे, सेंसुअल रस में रहेंगे, इंद्रिय तृप्ति से ही जो आनंद लेते हैं उस रस में रहेंगे, तो फिर फायदा नहीं। हमें उस वैकुंठ रस को प्राप्त करना है, उस स्तर में रहना है, तब एक आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए जो योग्यता है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भक्त लोग रहते हैं, उस प्रकार से उस स्तर में हम रह सकते हैं। और फिर हमारा जो सिद्धि है, पंचम पुरुषार्थ, वो कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से श्रृंखला है, आगे भी हम सुनेंगे कैसे भौतिक जगत में व्यक्ति, जो भौतिक व्यक्ति और भी दुख कष्ट भोगता है। समय हो गया, यहां हम विराम देते हैं, क्षमा कीजिए अगर मैं जरूरत से ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन आप सबके आशीर्वाद चाहिए, आप सब ब्रजवासी कृपया आशीर्वाद दे कि हम भी उस रस में हमेशा स्थान अवस्थित रहे, और आप सब भी। श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, थाई गौर प्रेमानंदे।